नीति से चाहते थे कि वे उनसे ना पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान किससे करें? भीष्म किससे परीक्षा होती है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ये सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। यदि धर्म संस्थापना है, धर्म स्थापना है, धर्म की स्थापना है, भक्त की महिमा की स्थापना करना, ये भगवान का एक कार्य है, भगवान का अवतार इसलिए होता है। भक्त की महिमा की स्थापना करना चाहते हैं भगवान, उनके अवतार का ये प्रयोजन है। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध बने। पिता चाहता है, क्या चाहता है? आपको खड़े हो जाना चाहिए, जो विनम्र भक्त हैं और निंदा रहे उनको खड़े हो जाना चाहिए। ये विनम्रता का चिन्ह है कि आप खड़े हो जाए। भगवान बलपूर्वक घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से अधिक मूल्यवान है। तो और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब मैं दूसरी पुस्तक खोल रहा हूं, ये भक्ति विकास स्वामी की है। इसका नाम है क्या? जय श्रील प्रभुपाद। तो इसमें वो तुलना कर रहे हैं भीष्मदेव से अपनी वृद्धावस्था में। अब सुनिए ध्यान से, प्रभुपाद की तुलना भीष्मदेव से कर रहे हैं। अपनी वृद्धावस्था में भीष्मदेव उत्साहित थे और युद्ध के योग्य थे, युद्ध करने के लिए योग्य थे। तो प्रभुपाद ने भी युद्ध किया है और भीष्मदेव जी शस्त्रों से युद्ध करते थे और प्रभुपाद शास्त्रों से युद्ध करते है ना। तो वृद्धावस्था दोनों की, भीष्मदेव जी की वृद्धावस्था, प्रभुपाद की वृद्धावस्था। और अपने शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने पूर्ण रूप से सरसैया पर भी धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन दिया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी अपनी वृद्धावस्था में युद्ध के लिए भारत से बाहर गए और अंत में उन्होंने धार्मिक शिक्षाएं दी अपने मृत्यु सैया पर। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, अब देखो कई तुलनाएं हैं भीष्म से कर रहे हैं, एक तुलना तो वृद्धावस्था की है, वृद्धावस्था दोनों की, और दूसरी तुलना युद्ध में उत्साह है दोनों का, योग्यता भी, युद्ध करने में योग्यता भी। अकेले भीष्मदेव जो है ना महारथी है, चाहे जितनी संख्या हो शत्रुओं की एक साथ युद्ध करते हैं, और प्रभुपाद भी अकेले महारथी, विदेशों में हर जगह अकेले महारथी प्रभुपाद जी थे, और जितने भी आए सब कुछ ना प्रभुपाद हराते थे। और फिर तीसरी तुलना की है, अंतिम क्षण में मृत्यु के समय भीष्मदेव ने प्रवचन दिया कृष्ण कथा, और प्रभुपाद ने भी मृत्यु के समय भी कृष्ण कथा पर प्रवचन दिया। और तुलना है कि जब भगवान, जब भीष्मदेव शरीर त्याग रहे थे तो भगवान स्वयं उपस्थित थे उनके सामने, किस रूप में? चतुर्भुज रूप में। तो प्रभुपाद भी जब शरीर त्याग रहे थे तो भगवान उपस्थित थे, किस रूप में? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान उपस्थित थे। पता है कैसे?
नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है,
सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, बस में अखंड कीर्तन कर रहे थे। आप लोगों ने वो चित्र फिल्म देखी होगी ना, योर एवर वेल विशर, तो कितना फाइनल लेसन, अच्छा हाँ फाइनल लेसन है, तो भक्त लोग कितना उत्साह से कीर्तन कर रहे थे है ना। तो ये प्रभुपाद को प्रिय था भगवान का रूप हरे कृष्ण महामंत्र, भीष्मदेव को प्रिय था भगवान का चतुर्भुज रूप, और प्रभुपाद को प्रिय था भगवान का ये महामंत्र रूप है ना। तो भगवान महामंत्र के रूप में प्रकट हुए प्रभुपाद के सामने। अब मेरे लेखन भी हैं जिनमें कि बीच बीच में भीष्मदेव की चर्चा हुई है, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहा है गीता के पहले अध्याय के आठवें श्लोक में, तो भीष्म का नाम ले रहा है, तो द्रोणाचार्य का पहले नाम लिया दुर्योधन ने, भगवान ये आप है हमारी सेना में, और फिर भीष्म का नाम लिया। तो भीष्म जी ने दुर्योधन से उस घटना का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया था। महाभारत युद्ध के पहले भीष्म जी ने एक घटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया था दुर्योधन से, जिसमें अम्बा से विवाह न करने के कारण उनको अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। कौन? परशुराम। अम्बा से विवाह ना करने के कारण उनको अपने गुरु से युद्ध करना पड़ा, परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा। और यह घटना भीष्म जी ने विस्तार से बताई। किसको? दुर्योधन को। किस समय? महाभारत युद्ध के पहले। अपनी कमजोरी उन्होंने बताई कि कमजोरी मेरी यहां पर है और कहीं कमजोरी नहीं है। मतलब अगर वो मारे जाएंगे तो उस कारण से मारे जाएंगे। तो अपनी एक कमजोरी बताई उन्होंने दुर्योधन को। इस युद्ध में भीष्म की परशुराम पर विजय हुई थी तथा इसी घटना के कारण परशुराम जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में वे किसी भी क्षत्रिय को युद्ध की शिक्षा नहीं देंगे। परशुराम जी जब हार गए भीष्म से, बोले अब आगे से कान पकड़े, क्षत्रियों को युद्ध की शिक्षा नहीं देंगे। ये लोग युद्ध की कला सीख लेते हैं फिर हरा देते हैं, है? आगे से ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, मैं क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। भीष्म का नाम, भीष्म नाम का अर्थ भी है भयानक, अर्थात जो व्यक्ति युद्ध में अत्यंत भयानक दिखाई देता हो वह भीष्म है। दुर्योधन को आशा थी कि भीष्म उसकी सेना में भयानक रूप से युद्ध का प्रदर्शन करेंगे। भीष्म जी का नाम श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों में आया है। यमराज यमदूतों को बतलाते हैं कि ये 12 व्यक्ति भगवान तथा भगवान के नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल तथा अन्य श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं के सामने श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। भीष्म जी ने शिशुपाल के सामने ही शिशुपाल के पूर्व जन्म के संबंध में बतलाया, उसके पूर्व से भी पूर्व जन्म के संबंध में बतलाया था कि ये रावण था पिछले जन्म में, उसके भी पहले ये हिरण्यकश्यपु था, शिशुपाल के मुंह पर ही बताया। सबके सामने बताया ये शिशुपाल जो है ये कौन है, पिछले जन्म का, पिछले से पिछले जन्म का कौन है। महाभारत में अनेक स्थलों पर भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते पाए जाते हैं। जब अर्जुन के बाणों से भीष्म जी का संपूर्ण शरीर विद्ध हो गया तथा उनके शरीर में एक अंगुली की भी जगह ना थी जहां अर्जुन का बाण ना छिदा हो, तो समय भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वे उन योगियों को प्राण त्यागने की विधि सिखाना चाहते थे जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी योगाभ्यास तथा ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। भीष्म जी की को आवश्यकता नहीं थी कि इस विधि के द्वारा वो शरीर छोड़े, लेकिन उन योगियों को जो शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ना चाहिए, तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं जहां जाकर पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया तब तक भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को महाभारत युद्ध के बाद अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, जिसके अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम भी है। ये बहुत प्रसिद्ध है विष्णु सहस्त्र नाम। महाभारत में दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो भगवद गीता और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, अर्थात विष्णु के 1000 नामों का भी वर्णन आता है। भीष्म जी का चरित्र अगाध है, श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में उनका जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और पूर्व काल में भीष्म जी ने काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया था। उनका स्वयंवर था, स्वयंवर में क्या था कि कन्या जिसको चाहे उसके गले में माला डाल दें, लेकिन इन्होंने अपहरण कर लिया 3 कन्याओं का। समस्त राजाओं और उनकी सेनाओं को अकेले परास्त करके 3 कन्याओं का अपहरण किया। उन 3 कन्याओं में से अंबिका के पुत्र थे कौन? 3 कन्याओं में अंबिका के पुत्र थे कौन? धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा से तो विवाह हुआ नहीं किसी का और वो भीष्म की शत्रु बन गई। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, ठीक है। और विदुर जी दासी के पुत्र थे। तो अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र का ही पुत्र दुर्योधन था। फिर दुर्योधन ने कहा कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना, हमारी सेना सुरक्षित है। तो यहां पर भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना का एक और अर्थ है, भीष्म जब वैवाहिक योग्य थे तथा अपने पिता शांतनु के अकेले पुत्र थे। उस समय प्रजा यही चाहती थी कि अपने पिता के बाद भीष्म ही क्या बने, राजा बने। परंतु जब एक मछुआरे ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह भीष्म के पिता शांतनु के साथ करने से इसलिए मना कर दिया कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वह राजा नहीं बन सकता, तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे तथा सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राजा बनाएंगे। इस पर भी जब मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ तथा उसने कहा कि तभी भीष्म तो राज्य नहीं करेंगे, परंतु भीष्म के पुत्र आगे चलकर राज्य छीन सकते हैं, तो भीष्म ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने के लिए बाध्य थे, इसलिए विवश थे। दुर्योधन भी अपनी सेना में भीष्म जी के पराक्रम पर सबसे अधिक विश्वास करता है। भीष्म जी धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञात था कि धर्म के पथ पर चलने वाले कौरवों का क्या होगा, विनाश होगा, तथा वे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के रहस्य को भी जानते थे। यहां तक कि उन्हें अपनी मृत्यु का भी पता था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार और कब होगी। भीष्म जी की अपने राज, अपने परिवार, अपने शरीर तथा भोगों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। भीष्म जी सुख और दुख में समान थे और उनका नाम भगवान नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 है, महाभागवत में भी आता है। जिसने अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण कहकर बुलाया था, तो उसकी रक्षा करने के लिए 4 विष्णु दूतों ने अजामिल को नरक में ले जाने के लिए आए हुए 3 यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जब ये घटना यमराज से बतलाई तो यमराज ने भगवान नाम की महिमा के इस रहस्य को जानने वाले 12 व्यक्तियों के नाम गिनाए थे। वे कौन कौन है? पहला ब्रह्मा जी, दूसरे नारद जी, तीसरे शंकर जी, चौथे 4 कुमारगण, 5वें भगवान कपिल देव, 6वें स्वयंभू मनु, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक महाराज, 9वें भीष्म जी, 10वें बलि महाराज, 11वें सुखदेव गोस्वामी और 12वें यमराज स्वयं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण के कितने महान भक्त थे। वे युद्ध करते समय भी अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करके आह्लादित होते रहते थे। अपनी मृत्यु के समय पर भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर जी ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा धर्म क्या है तथा किसका जप करने से जीव जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा देवता बतलाया तथा उनके नाम कीर्तन को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया तथा मुक्ति का साधन बतलाया। फिर श्री कृष्ण के गुण तथा लीलाओं पर आधारित उनके 1000 नामों का वर्णन करके भीष्म जी ने महान भक्त के रूप में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी। अंत में ठीक है, तो ये जो है भीष्म जी के बारे में कुछ बातें हुई। और भी श्लोक है जिसमें दुर्योधन कह रहा है कि सब लोग, सब मेरी सेना के योद्धा भीष्म जी रक्षा करेंगे। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं ये सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के ही समक्ष नहीं बल्कि भीष्म जी और अन्य समस्त प्रमुख वीरों के समक्ष बोल रहा है कि भीष्म जी की रक्षा करो सब लोग मिलकर के। ये बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है कि वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी उस समय देवताओं ने भीष्म जी को अपने से पराजित समझा था। देवता भी अपने को पराजित समझते हैं भीष्म जी से। क्यों क्यों पराजित समझते हैं?
भोगों में रहते हैं हमेशा।
उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी तथा उनको भीष्म नाम दिया था। यहां पर एक प्रश्न है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या विशेषता है? तब देवताओं ने अपने को उनसे पराजित क्यों समझा था? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं तथा वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं परंतु फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी। वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे तथा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में यह प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत, जो उनका पूर्व का नाम था, को भीष्म नाम दिया तथा उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म एक महा भागवत है तथा भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो उनके अभिविचारी भक्ति योग में लगे होते हैं वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण रजोगुण तथा सत्वगुण इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। जब तक हम तमोगुण तथा रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते तब तक हमें काम रूपी शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था, किसी प्रकार के युद्ध द्वारा नहीं। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को ना समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी भी नहीं समझ सकते। दुर्योधन तो केवल इतना ही समझता था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजेय हैं और इस प्रकार वह भीष्म जी की युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में
लगाना चाहता
करना चाहता है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है, तो आप तो सोचोगे कि भीष्म की रक्षा करने के लिए सबको बोल रहा है तब तो वो तो जो ना विष्णु के भक्त की सेवा कर रहा है। अब यहां बड़ी समझने की बात है कि शास्त्र में कहा गया है कि भगवान से बढ़कर भगवान की भक्ति सेवा है, वो तो भीष्म जी की सेवा में सब योद्धाओं को कह रहा है कि लगो इनकी रक्षा करो भीष्म जी की। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है, भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं तथा दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है, तो क्या यह कार्य विष्णु की सेवा या विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है? नहीं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी सेवा कर रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी कर रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आपकी सेवा थोड़ी होगी, है ना? तो ये चीज है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना ना होकर दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। सेवा की भावना थोड़ी है, स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन यही सोचता है कि यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत कष्ट भोगेंगे, उसकी इसी में प्रसन्नता है कि पांडवों को जीवन पर्यंत कष्ट भोगना पड़े और मैं जीवन पर्यंत भोग भोगूं, इसलिए भीष्म की रक्षा करना चाहता है। यहां पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है। वो जानता है कि भीष्म जी क्या चाहते हैं। भीष्म जी क्या चाहते थे दुर्योधन से? क्या चाहते थे? कि वो पांडवों का राज्य वापस कर दें, पांडवों का सम्मान करें, है ना? लेकिन वो नहीं चाहता है, भीष्म जी को प्रसन्न नहीं करना चाहता है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है तथा वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता। जानता है कि ये क्या चाहते हैं लेकिन नहीं चाहता, वो वैसा काम नहीं करना चाहता है। यहां पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। और कुरुवृद्ध एक श्लोक है गीता में जहां भीष्म जी को कुरुवृद्ध कहा गया है, प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 12 है, कुरुवृद्धा पितामह, इसमें चर्चा हुई है। इस श्लोक में भीष्म जी को कुरुवृद्ध कहा गया है। वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, पहला वयोवृद्ध और दूसरा ज्ञान वृद्ध। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं। भीष्म जी वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं। शारीरिक अवस्था में वृद्ध होने के कारण उन्हें पितामह भी कहा गया है, इसलिए यहां पर वृद्ध कहने का तात्पर्य विशेष रूप से ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध है। हम जानते हैं कि भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान में गंभीर रूप से निपुण है, परंतु दुर्योधन उनसे क्षणिक हर्ष की ही प्राप्ति कर रहा है, वो कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं लेना चाहता है, वो तो क्षणिक हर्ष की प्राप्ति कर रहा है। वह श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, जबकि युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से तब तक श्री कृष्ण की महिमा सुनी जब तक भीष्म जी की श्वास चलती रही। तो दुर्योधन जो है ना भीष्म जी से क्षणिक हर्ष प्राप्त कर रहा है, जबकि युधिष्ठिर जो है भीष्म जी से कृष्ण की महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भीष्म जी को प्रतापवान भी कहा गया है, इसका अर्थ है कि उन्हें मृत्यु का कोई भय क्या
नहीं,
मृत्यु का कोई भय नहीं है। भीष्म जी को मृत्यु का कोई भय नहीं है। भीष्म जी इतने अधिक निर्भय थे कि मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि और समय निश्चित कर दिया था और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया था कि इस समय तुम सब लोग आना, अभी जाओ, अभी विश्राम कर लो, खाना सोना जो कुछ भी कर लो, उस समय आ जाना, एक निश्चित समय बता दिया। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया था कि कृष्ण भक्त किस प्रकार निर्भयता पूर्वक अपने भौतिक शरीर का त्याग करके श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की भी तुलना भीष्म देव से की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए तथा अपने शिष्यों से घिरे हुए अपने शरीर का त्याग किया था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन भीष्म जी की उस प्रकार की दया नहीं प्राप्त कर सका जिस प्रकार की दया किसने प्राप्त की, युधिष्ठिर महाराज ने। तो इस तरह से हमने चर्चा की है और अब मैं चाहूंगा जरूर कुछ आप लोगों की ओर से चर्चा हो या प्रश्न हो। हाँ प्रभु,
जो कुछ इनकी वस्तु के बारे में बताएंगे, देव वस्तु कैसे थे।
इनका प्रश्न है कि वो देव नाम के जो वसु उनके बारे में बताएंगे कैसे उसको साथ मिला। आठ वसु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए इसलिए वहां आश्रम की शोभा देखने के लिए, तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में थे आठों वसु। तो वशिष्ठ जी उस समय अपने आश्रम में नहीं थे, तो वो आश्रम की शोभा देखते हुए और निकल गए और सबसे पीछे रह गए वो सबसे छोटे देव नाम के वसु। तो अपनी पत्नी को दिखलाते हैं कि देख ये वशिष्ठ जी की जो गाय है नंदिनी, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी जो गाय है, तो ये इसका दूध पीने से कोई व्यक्ति 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाता है। तो पत्नी कहती तो चुरा लो। पत्नी में तो ये होती है कि कोई भी अधिक से अधिक चीजें जोड़ी जाए इकट्ठे की है ना, तो चुरा लो। तो पत्नी के अंदर चुरा लिए। तो फिर जो है वशिष्ठ जी जब आश्रम में आए तो देखा कि गाय नहीं है, तो अपनी उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो पता चला कि आठ वसु आए थे, तो आठों वसुओं को साथ दिया उन्होंने कि वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, मनुष्य बनेंगे, है ना। जब आठों वसुओं को पता चला तो वो आए, बोले हमारी तो कोई गलती नहीं है, आपने साथ दिया हमें, जिसकी गलती है तो आप उसको साथ देते, हम आठों को आपने साथ क्यों दे दिया। तो वशिष्ठ जी बोले कि ठीक है, अब जो साथ दिया है तो वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ कम कर सकता हूं, और वो यह है कि जल्दी वापस आ जाओगे अपने वसु के रूप में, तुम लोग मनुष्य लोक में जन्म लोगे लेकिन जल्दी वापस आ जाओगे, लेकिन हाँ ये जिसने चुराई है गाय तो वो ज्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि पत्नी के कहने से चुराई है इसलिए पत्नी उसको नहीं मिलेगी जीवन भर। तो इस प्रकार से है जो है जो आठ वसु थे, अब वो चिंता में पड़े कि हमको अब किसके यहां जन्म लेना है, कौन हमारे पिता बनेंगे, कौन माता बनेंगे, है ना। तो फिर जो है ना वो गंगा जी के पास आए, गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, गंगा जी को श्राप मिल चुका है ना, और जो महाभीष नाम के राजा थे उनको भी श्राप मिल चुका है ब्रह्मलोक में कि वो जो है जन्म लेंगे शांतनु के रूप में और गंगा जी उनकी पत्नी बनेंगी। तो गंगा जी के पास आए, बोले माता अब तुम जो है ना हमारे ऊपर कृपा करो, तुमको भी साथ मिला है कि तुम शांतनु के रूप में जो महाभिष नाम के राजा हैं उनकी पत्नी बनोगी, तो तुम हमें जन्म दो हा? और जल्दी ही हमको मुक्त करो, हमें हमारे लोक में वापस भेज दो। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, तो गंगा जी तैयार हो गए। तो इस तरह से जो आठों वसु थे वो एक एक करके गंगा जी से जन्म लेते हैं। और गंगा जी ने फिर इसी कारण से कि चूंकि वे आठ वसु से बात हो चुकी है उनकी पहले से ही, और वो जन्म देकर के उनको गंगा जल में डुबोएंगी, उनको वसु लोक में पहुंचाएंगी, तो शांतनु से जब विवाह का प्रस्ताव हुआ उनका, तो उन्होंने पहले से ही शर्त रखी कि मैं जो कुछ भी करूं अपने इच्छा के अनुसार, आप कुछ भी विरोध नहीं करना है, और जैसे ही आपने विरोध किया तो मैं छोड़ के चल दूंगी। तो पहले गंगा जी मिली थी शांतनु के पिता से प्रतीक, शांतनु के पिता से प्रतीक, तो उनसे जो है बात हुई थी। तो प्रतीक ने कहा कि तुम मेरी पुत्र वधु बनो, तो बोले कि मैं मतलब पुत्र वधु बनूंगी लेकिन एक शर्त है मेरी। तो प्रतीक जब शरीर त्याग रहे थे तो शांतनु को समझा दिया कि एक जो है ना सुंदर स्त्री तुमको मिलेगी जंगल में, और तुम उसका बिना नाम पूछे, बिना उसका वंश पूछे कि किस पिता की पुत्री है, और बिना उस हर प्रकार की शर्त मान करके उससे तुम विवाह कर लेना। तो संतनु ने पूछे नहीं कि इनका क्या नाम है और किस वंश की स्त्री है ये है? और उसने कहा कि मैं जो भी करूं अपनी मर्जी से, आप विरोध नहीं करना, विरोध किया तो मैं चल दूंगी, चली जाऊंगी। तो उन्होंने बिना विरोध किए मतलब सहन किया। और गंगा जी क्या करती हैं, जैसे पुत्र पैदा करती हैं वहां महल में तो बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, राजा के घर में पुत्र हो तो कितना बड़ा उत्सव होता है, है? और ये क्या करती हैं, गंगा जी में जल में जाके डुबो दिया। और कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकता है, कितनी तनाव की स्थिति पैदा हो गई कि किसी की हिम्मत नहीं कुछ पूछने की, क्या कर रही है और शांतनु जो है चिंतित, उनको पुत्र चाहिए, और एक पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, सात पुत्र ऐसे ही पानी में डुबो दिए, गंगा जी में डुबो दिए इन्होंने, और किसी की हिम्मत नहीं। फिर आठवां जब पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु ने अब कड़ा हृदय कर लिया कि अब चाहे चली जाए ये, मैं नहीं ऐसा करने दूंगा। तो फिर डांट करके बोले कि तू किस वंश की है बता, तू सर्पिणी जैसे अपने बच्चों को पैदा करके खा जाती है, ऐसे तू जो है ना कर रही आचरण, ये क्यों कर रही है ऐसा तुम आचरण। तो बड़े कठोर शब्द बोले, तो गंगा जी बोली बस महाराज हरे कृष्णा ये पुत्र आपका है और बस मैं चली। तो गंगा जी चली गई इस तरह से जो है, और फिर बता दिया उन्होंने कि मैं जो है ना महर्षि जहनु की कन्या हूं, जहनवी नाम है ना, जहनु की कन्या, जहनु ऋषि पिए गए थे गंगा जी को, तो भागीरथी भी इनका नाम है, जहनवी भी नाम है। तो जहन है तो चूंकि अपने शरीर से उत्पन्न किया था इसलिए जहनवी कहलाती है। तो इस तरह से जो है उन्होंने भीष्म जी को दे दिया शांतनु के हाथ में। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? एक दो, अच्छा दो लोग पहले आप। हाँ, आदर भाव तेरो भाव, हाँ वो कैसे, इन्होंने प्रश्न किया है कि वैष्णवों का आदर भाव तेरो भाव दोनों पवित्र होता है, वो कैसे? क्योंकि तेरो भाव जब होता है उनका तो भगवान की सेवा में जाते हैं, है कि नहीं, और आदर भाव होता है तो पृथ्वी को पवित्र करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो है दोनों जो है ना उनके दिव्य हैं, आदर भाव तेरो भाव दोनों दिव्य हैं वैष्णवों के। और वैसे आदर भाव तेरो भाव में कोई अंतर भी नहीं है, जीव व मरो वा, चाहे जिंदा रहो चाहे मरो, कोई अंतर नहीं है। वैष्णव का शरीर बदलता है लेकिन उसका कार्य नहीं बदलता, उसका एकमात्र कार्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना। तो चाहे वो जिंदा रहे चाहे मरे, उससे उसके कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ता, शरीर बदलता है लेकिन कार्य नहीं बदलता उसका। आपका प्रश्न, अच्छा सॉरी, पहले आपने हाथ उठाया था, किसने हाथ उठाया था, आपने? अच्छा हाँ,
जब पांडवों ने बाणों से छेदा तो फिर उतने बाण उठने लगने की क्या कारण?
इनका प्रश्न है कि जब भीष्म जी के शरीर को अर्जुन ने छेदा बाणों से, इतने बाण लगने के क्या कारण थे? कई कारण, एक कारण नहीं है, अभी मैं सब कारण की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत से कारण, एक कारण ये भी है कि भगवान कृष्ण दिखलाना चाहते हैं कि एक भक्त जो है ना शरीर में अपनी पहचान नहीं करता है, और इस प्रकार से वो जो है देहात्म बुद्धि से मुक्त रहता है, और शरीर की इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी उसका जो मन है बुद्धि है वो पूरी तरह से कार्य करते हैं, है कि नहीं। तो और भी कई कारण है लेकिन मैं अभी सब कारण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपका प्रश्न, वसु किसे कहते हैं? वसु जो है देवताओं में एक विशेष जो है जाति है वसु, और इनका क्या कार्य है मैं ठीक से नहीं बता सकता हूं, देखना पड़ेगा कि इनका क्या कार्य होता है वसुओं का। लेकिन वसु जो है कश्यप जी की एक वसु नाम की पत्नी है, उससे 8 पुत्र हुए तो वो वसु कहलाए, ठीक है ना। इन देवताओं की सृष्टि में ही ये वसु भी आते हैं। 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें जो है ना वसु हैं और साध्य हैं और जो है किन्नर हैं गंधर्व हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है भीष्म देव के आविर्भाव का, और हम प्रार्थना करते हैं भीष्म देव से कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारा मन श्री श्री राधा पार्थार्थ के चरण कमलों में स्थिर हो जाए और सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भीष्मदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थार्थ।